أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. آج تہجد پروگرام کا پہلا سبق ہے اور مجھ سے ایک بہت اچھی ہماری ساتھی، بہت اچھی مومنہ پیاری دوست جو ہیں ہماری، قرآن گروپ میں بھی ہیں اور حیا علی الفلاح میں بھی ہیں، انہوں نے خاص طور پر ریکویسٹ کی تھی کہ آپ شرک پر لیکچر دیں. اور میرے خیال میں کہ یہ ان کا سارا ثواب ہے، یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے کہ انہوں نے مجھے یہ آئیڈیا دیا. ویسے بھی میں قرآن کے درس میں شرک کا ایک الگ سے چیپٹر ہوتا ہے جو میں کافی شروع میں پڑھا دیتی ہوں، بلکہ یہ اصول القرآن کا ایک حصہ ہے کہ قرآن کے طالب علم کو سب سے پہلے شرک کی پہچان ہو. کیونکہ یہ مجھے کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ قرآن بیسیکلی توحید کی کتاب ہے. قرآن کا مقصد انسان کو یہ سمجھانا ہے کہ اس کا خالق اور مالک اور اس کا رازق، اس کا شافی، اس کا داتا، اس کا مولا، سب کچھ اللہ ہے. جیسے قرآن میں ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یعنی کہ سب کچھ میرا، سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے. اور اللہ کی ذات جو بے نیاز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کو ہمارے توحید پرست ہونے سے ریئلی کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ ہم اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہم اللہ کو، نعوذ باللہ، کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے توحید کا کانسیپٹ اور توحید کا اصول ہمارے اوپر اس لیے لاگو کیا ہے کیونکہ اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. آپ مغربی جو مفکرین ہیں، کتنا زیادہ کانسنٹریشن اور فوکس اور ویژن اور سنگولیرٹی آف پرپز اور آبجیکٹیوٹی اور سنگل ایمبیشن، کتنا زیادہ زور ہے ان باتوں پہ، اور کتنا زیادہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کامیاب لوگوں کی ایک ٹریٹ ہے کہ وہ ایک چیز پر فوکس ہوتے ہیں. تو جب اللہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ ساری آپ کی جو زندگی ہے، اس کا بیسک اصول توحید ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی. تو شرک کا سمجھنا بہت ضروری ہے قرآن کے سمجھنے کے لیے. شروع کرتے ہیں. شرک عربی کا لفظ ہے، اور سمپلی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا اردو ترجمہ ہے شامل کرنا، کسی کو شامل کرنا، کسی کو شریک بنانا، اللہ کی ذات میں شریک بنانا، اللہ کی صفات میں شریک بنانا. اللہ کی ذات میں شرک جو ہے، کیونکہ صفات میں ہم غلطی کر جاتے ہیں، اس کا حدیث میں بھی ذکر ہے. جیسے اگر کسی نے یہ کہا کہ اگر رات کو گھر میں یہاں کتا نہ بندھا ہوا ہوتا تو ہمارے گھر تو چوری ہو ہی جانی تھی، حدیث میں ہے یہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ شرک ہے. اسی طرح حدیث میں ہے کہ ریاکاری شرک ہے. یعنی اگر کوئی کام کرتے ہوئے آپ کا فوکس اللہ کی ذات نہیں ہے بلکہ لوگوں کو امپریس کرنا ہے اور ریاکاری کرنا ہے، تو وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. اللہ کی ذات میں جو شرک ہے، یہ تو میں نے جو آپ کو دو باتیں بتائی ہیں، یہ صفات میں شرک ہے. اللہ کی ذات میں شرک کی چار اقسام ہیں جو ہمارے بڑوں نے پڑھائی ہیں. شاہ ولی اللہ، آپ کے جو احیاء العلوم کے امام غزالی ہیں، امام تیمیہ ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، سب نے اللہ کی ذات میں شرک کی چار اقسام بتائی ہیں، اور یہ اقسام میں آپ کو سورہ فاتحہ کے ذریعے سمجھاؤں گی. کیونکہ سورہ فاتحہ قرآن کو کھولتی ہے، اور اس وہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، تو اس طرح جب آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں گے تو یہ چاروں قسم کی شرک جو ہیں آپ ان کی نفی کریں گے. आप हर नमाज में जब भी सूरह फातिहा पढ़ते हैं आप असल में शिर्क की नफी कर रहे होते हैं। ये शायद पहली दफा आप मुझसे सुन रहे हों, अल्लाह करे कि ये आपको याद रहे और आगे भी आप लोगों को पढ़ाएं। तो अल्लाह की जात में शिर्क की पहली किस्म है शिर्क फिल इलम, अल्लाह के इलम में किसी को शरीक मानना, ये सोचना कि अल्लाह के अलावा भी किसी को मेरा हाल मालूम है, अल्लाह के अलावा भी कोई मेरे मुस्तकबिल का इलम रखता है और अल्लाह के अलावा भी किसी को वो बातें मालूम हैं जो मुझे नहीं नजर आ रही, मसलन गैब का इलम है जी। तो अल्लाह के इलम में किसी को शरीक मानना जो है ना, ये ऐसा है जैसा आपने अल्लाह की जात में शिर्क किया है, जैसा आपने अल्लाह की जात को वाहिद मानने से इनकार किया है, अल्लाह को अहद मानने से इनकार किया है। और जब हम सूरह फातिहा शुरू करते हैं तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हैं जी, इससे बड़ी नफी जो है ये नहीं हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह, खास तारीफ, वो तारीफ जो एक चीज की हर खूबी और अच्छाई और भलाई और उसके फायदे और नुकसान को देखकर उसके बनाने वाले की जाए, वो हम्द। एक तो क्वालिटी ये है कि एक चीज की हर एंगल से एनालिसिस करने के बाद वो तारीफ की जाती है, और दूसरी क्वालिटी ये है कि ये तारीफ खुशामद के ख्याल से या किसी को इम्प्रेस करने के ख्याल से, ये वो तारीफ नहीं है, ये किसी की मोहब्बत से मغلوب होकर उसकी तारीफ करना जो है उसे हम्द कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह के सिवा कोई तारीफ के काबिल है ही नहीं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों की तारीफ नहीं कर सकते। अगर ये होता कुल्लु हम्दुलिल्लाह फिर आपको, फिर हमें बहुत बड़ा मसला बन जाता। नहीं, अल्लाह ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, जब तुम सारी तारीफें कर चुको तो वो फिर उसके बाद जो फाइनल तारीफ है कि आखिर इस इतनी खूबसूरत जमीन को, इस इतनी खूबसूरत जिंदगी को, इतने खूबसूरत इंसानों को बनाने वाला खुद कितना खूबसूरत होगा, ये अल्हम्दुलिल्लाह है। और अल्लाह के इलम में ये किसी के भी शिर्क की नफी है। जब किसी के पास इल्म ही नहीं है कि वो उस जैसा काम कर सके तो उस जैसी तारीफ हम कैसे किसी की कर सकते हैं। और इसके बाद हम कहते हैं रब्बिल आलमीन। अगर हम ये मान लें कि अल्लाह के इल्म में कोई शरीक है तो फिर आहिस्ता 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 हमारा दिल इस पर भी मायल हो जाता है कि अल्लाह के तसर्रुफ में भी वो शरीक हो सकता है। अगर उसे मेरी हालत का इलम है तो फिर वो मेरी हालत बदलने पर भी कादिर है, वो मेरी हालत के लिए कुछ कर सकता है। ये तसर्रुफ में शिर्क है क्योंकि अल्लाह का तसर्रुफ कुल है, अल्लाह के तसर्रुफ में कोई भी किसी किस्म की शिर्क की इजाजत, किसी किस्म की शिर्क की जगह ही नहीं है अल्लाह के तसर्रुफ में। इसकी मिसाल मैं आपको सूरह रोम से देती हूँ। सूरह रोम में बड़ी खूबसूरत मिसालें हैं इसकी। मुझे खोलने दीजिए आप सूरह रोम, अगर आपके पास कुरान है तो वो भी खोल लें, आपको ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। अल्लाह के तसर्रुफ की बड़ी खूबसूरत मिसालें सूरह रोम में हैं, आयत नंबर 31, 32 और 33। ये मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ और आपको बता भी देती हूँ। आयत नंबर 31, मुनीबीन इलैही, वो रुजू करने वाले हैं उसकी तरफ, वत्तकू हो और तुम डरो उससे, वकीम उस्सलात और नमाज कायम करो, वला तकून मिनल मुशरिकीन, यानी शिर्क का सबसे बेहतरीन तोड़ जो है वो है अल्लाह की तरफ रुजू करना, तौबा करना, और दौड़ो उसकी तरफ यानी रुजू करो उससे, वत्तकू हो और अल्लाह की नाराजगी से डरो, व अकीम उस्सलात नमाज कायम करो, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। और मुशरिकीन की फिर ये बीच में आयत कंटिन्यूअस है 31 और 32, مشرکین من اللذین، ان لوگوں میں سے، فرقو دینہم، تفرقہ کر دیا انہوں نے اپنے دین میں، وکانو شیعان، اور وہ ہو گئے فرقے، کلن حزب بما لدیہم، سب گروہ جو تھے جب وہ ٹوٹ گئے گروہوں میں تو جو کچھ ان کے پاس تھا، فریحون، وہ خوش ہیں، وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتے، وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں سیکھتے، وہ اس کے علاوہ کسی قسم کی محنت نہیں کرتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے یہ ہی سچ ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، آیت نمبر 33، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، اور جب چھوتی ہے انسانوں کو ضرن، کوئی تکلیف، دعاؤ ربہم، تو وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، منیبین الیہ، رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف. پہلا، آپ کو اللہ کے تصرف میں شرک کون کرتا ہے؟ جو اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ شرک کرتے ہیں، وہ اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور پھر جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ اس پہ جم جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہی یہ فرقہ جو ہے یہ ٹھیک ہے. یہ شرک ہے، اللہ کی ذات میں شرک ہے، اللہ کے تصرف میں شرک ہے. اور دوسرا شرک کون، یہی تصرف میں شرک کون کرتے ہیں؟ جب انسانوں کو کوئی تکلیف چھوتی ہے تو وہ تو پکارتے ہیں اپنے رب کو، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے. ثم اذا اذاقهم منه رحمتا، پھر جب ان کو چکھاتا ہے اپنی طرف سے رحمت، اذا فریق منهم بربهم، تو ناگہان ایک گروہ ان میں سے، بربهم یشرکون، وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ ناشکری کریں اس کی جو ہم نے انہیں عطا کیا. اللہ کے تصرف میں شرک کی ایک وجہ ناشکری ہے. فَتَمَتَّعُوا، لیکن اللہ انہیں اس وقت فوراً سزا نہیں دیتا، پس فائدہ اٹھا لو تم. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، عن قریب تم جان لو گے. یہ ہے آیت نمبر 33. اسی طرح آیت نمبر 28 اسی سورت کی، یہ بھی اللہ کے تصرف کے بارے میں بتایا ہے اللہ نے، اور یہ بڑی خوبصورت مثال ہے. ضرب لکم مثلاً، آیت نمبر 28 سورہ الروم، ضرب لکم مثلاً، وہ مثال دیتا ہے تمہیں، من انفسکم، تمہاری اپنی جان میں سے، حل لکم مما، کیا تمہارے لیے وہ جو ملکت ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے، یعنی کہ جو تمہارے غلام ہیں، من شرکاء، کوئی شریک ہو سکتا ہے، فیما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، فانتم فیہ سواء، تاکہ تم آپس میں برابر ہو جاؤ. یعنی کیا تمہارا غلام اور تم اس رزق میں برابر کے حصے دار ہو سکتے ہو جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، اور پھر تم اللہ کے تصرف میں شریک ڈالتے ہو. تخافونہم، کیا تم ان سے ایسے ڈرتے ہو، کخیفتکم، جیسے کہ تم ڈرتے ہو انفسک، اپنی جانوں کے بارے میں. یعنی کہ کیا تم ان کے بارے میں بھی ایسے ہی ڈرتے ہو جیسے تم اپنے بارے میں ڈرتے ہو. کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں، لقومی یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. تو دو قسم کے شرک کا میں نے رد کیا آپ کے سامنے. پہلا شرک فی العلم، یعنی اللہ کے علم میں کسی کو شریک ماننا، اور دوسرا شرک فی التصرف، اللہ کے تصرف میں کسی کو شریک ماننا. جب یہ بدبختی کسی پر آتی ہے، جب کسی کا قبلہ درست نہیں رہتا، پہلے تو وہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ بھی کسی کو میرا حال پتہ ہے، اور اس کمزوری میں وہ اتنا مبتلا ہوتا ہے کہ آہستہ 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 وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ اللہ کے تصرف میں بھی اس کا کوئی حصہ ہے جو میرا حال جانتا ہے. تو اگر میں یہ سوچوں کہ اللہ کے کسی بندے کا میری زندگی پر تصرف ہے، تو میں کیا کروں گی؟ میں اس بندے کے پیچھے لگ جاؤں گی؟ میں اپنی منتیں، مرادیں، اپنی دعائیں اس بندے سے مانگوں گی اللہ سے مانگنے کے بجائے؟ اگر مجھے کوئی یہ کہہ دے کہ اس پتھر کو چھو لو اور کل تمہارا رزلٹ ٹھیک آ جائے گا، تو میں وہ پتھر اٹھا کے اپنے گھر نہیں لے جاؤں گی. میں اس پتھر کو اپنے بستر میں اپنے ساتھ سلاؤں گی اور اس کی منتیں کروں گی کہ ہاں کل میرا رزلٹ اچھا آ جائے. تو ایک دفعہ جب کوئی اللہ کے علم میں کسی کو شریک مان لیتا ہے، और होते होते अल्लाह के तसर्रुफ में भी शिर्क करने लगता है, तो फिर तीसरी सूरत और कोई नहीं रह जाती सिवाय इसके कि वो अल्लाह के सामने दुआ करते हुए भी अल्लाह की जात में शिर्क करता है, जिसको हम कहते हैं शिर्क फिर दुआ। और ये बहुत बहुत खतरनाक किस्म का शिर्क है। सूरह फातिहा जब हम पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर रहमान अर रहीम, शिर्क फिर दुआ जो है इसकी नफी, इसका तोड़ अर रहमान अर रहीम में है। जब वो सबसे बढ़कर और सबसे ज्यादा बेअंदाजा रहम करने वाला अल्लाह और वो बार बार रहम करने वाला अल्लाह मेरा है और मैं उसके सामने नमाज पढ़ रही हूं, तो मैं कैसे किसी और से दुआ मांग सकती हूँ। लेकिन ये गलती हम करते हैं, हम गैर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, हम गैर अल्लाह से तावीज़ कराते हैं, हम गैर अल्लाह से अपनी मन्नतें मुरादें मनवाते हैं, हम गैर अल्लाह के लिए भेंटें चढ़ाते हैं और हम ये समझते हैं कि इसके ज़रिए अल्लाह खुश हो जाएगा। शिर्क फिर दुआ से बहुत बचें, ये बहुत ख़तरनाक किस्म का शिर्क है जो हम बग़ैर सोचे समझे करते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको बताती हूँ, सूरह अनाम कुरान मजीद की छठी सूरत है और सूरह अनाम की आयत नंबर 71, 71, इस पर जरा जाएं आप। आयत नंबर 71, 69, 70, हाँ जी। कुल कह दीजिए, अनदउ मिन दूनिल्लाहि, क्या हम पुकारें, क्या हम दुआएं मांगें गैर अल्लाह के सामने, क्या हम अल्लाह के अलावा किसी से दुआ मांगे, माला यनफाउना, जो ना हमें कोई नफा दे, वला यजुर्रुना, और ना ही हमें कोई नुकसान दे, वनुरद्दु अला आकाबिना, और हम फिर जाएं अपनी एड़ियों के बल, बाद इज हदान अल्लाह, बाद इसके जब अल्लाह ने हमें हिदायत दे दी। अब देखिए कितनी खौफनाक बात है, क्या हम अपनी एड़ियों के बल फिर जाएं बेवकूफ जानवरों की तरह, बाद इसके जब अल्लाह ने हिदायत दे दी, कल लजी उस बंदे की तरह, उसकी तरह, अस्तहवतु शयातीनो, जिसको शैतान ने भुला दिया, फिल अर्दे, इस जमीन में, हैराना, और वो हैरान परेशान है, लहू अस्हाबुन, उसके साथी हैं, यदऊनहु इलल हुदा अतिना, जो उसको बुलाते हैं हिदायत की तरफ के हमारे पास आ। कुल कह दीजिए, इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, बेशक अल्लाह ही की हिदायत हिदायत है, व उमिरना, और हमें तो हुक्म दिया गया है, लिनुस्लिमा लिरब्बिल आलमीन, कि हम फरमान बरदार रहें और हम झुक जाएं तमाम जहानों के रब के लिए। तो कुल अनदउ कह दीजिए, क्या हम बुलाएं, क्या हम दुआ करें गैर अल्लाह के सामने, जो ना हमें कोई नफा दे सके और ना कोई नुकसान। देखें, लोग कब्रों के सामने दुआएं मांगते हैं, कब्र के अंदर जो जात है वो बड़ी नेक है और वो बहुत पाक होगी और वो सब कुछ बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर उस जात का कोई तसर्रुफ था तो क्या वो इस वक्त कब्र के अंदर होते? अगर उस जात का कोई ऐसा कनेक्शन था अल्लाह के साथ जिससे वो अल्लाह के काम को रोक सकते, तो क्या वो मर जाते? थोड़ी देर अपने दिल पर हाथ रखकर ये बात जरूर सोचे। और एक दफा जब गैर अल्लाह के सामने हम दुआ मांगते हैं, तो फिर इस दर्जे की बेगैरती के बाद जो शिर्क हम करते हैं उसको कहते हैं शिर्क फिल इबादत। ये फाइनल शिर्क है। जो छोटी सी बात शिर्क फिल इलम से शुरू हुई थी, जैसे मैंने ये सोचा कि शायद फलां बाबा को या फलां बीबी को मेरे किसी हालात का इलम होगा, अल्लाह के अलावा भी इन्हें मेरे हालात मालूम होंगे, इन्हें मेरे मुस्तकबिल का पता होगा, और ये कमजोरी और ये सुरंग जब मेरी जात में बनी तो मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि बाबा या बीबी या कब्र या रूह या जिन मेरे हालात पर भी कोई तसर्रुफ रखते हैं। और चूंकि ये जातें मेरे हालात पर तसर्रुफ रखते हैं तो मैं क्यों ना इन्हीं से दुआ मांगू, कम अज कम ये मुझे नजर तो आते हैं, कम अज कम इनका कोई नाम तो है। मेरा ईमान गैब से खत्म हो गया। युमिनून बिल गैब, ईमान का हिस्सा है ये। तो मैंने फिर इन जातों से दुआएं मांगनी शुरू कर दी, और जाहिर है जब फिर मैं इनसे दुआ मांग रही हूं तो फिर तो मैं इनकी इबादत कर रही हूं। चार किस्म के शिर्क मैंने आपको बता दिए, इलम, तसर्रुफ, दुआ, इबादत, और ये एक किस्म जो है ये दूसरे का दरवाजा है, और फाइनल शक्ल इसकी शिर्क फिल इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाह में आप नफी करते हैं शिर्क फिल इलम, रब्बिल आलमीन आप नफी करते हैं शिर्क फिल तसर्रुफ। रब वो है जो तख्लीक करता है, जो आगे चलाता है, जो नश्वोनुमा करता है, जो परवरिश करता है, जो तरबियत करता है, जो सींचता है, और फिर उसी ने खत्म करना है और उसी ने दोबारा उठा के हिसाब लेना है। ये वो रब है और हम इसके तसर्रुफ में शिर्क करते हैं। ये तमाम जहानों का और तमाम जमानों का रब है। आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम, ये शिर्क फिद दुआ, इसकी नफी है। बेपनाह रहम रखने वाला वो रब जो तमाम जहानों और जमानों का रब है, क्या हम उसके अलावा किसी से दुआ मांग सकते हैं? ये नामुमकिन है। और वो रब जो ना सिर्फ बेपनाह रहम करने वाला है, उसने आगे हमारा हिसाब लेना है। मालिकी यौमिद्दीन, ये वो दिन है जिस दिन सब जिंदा होकर दोबारा मरेंगे, जिस दिन हजरत इज़राइल को अल्लाह कहेगा तुमने बहुत अतात की मेरी, आज तुम अपनी भी जान दे दो। और जब इज़राइल भी फौत हो जाएंगे तो वहां पर हमसे, देखें हम अभी मौजूद हैं, हमारे बाद भी कितनी नस्लें आनी हैं और हमसे पहले कितनी नस्लें गुजर गईं हजरत आदम के बाद, वो सारी नस्लें वहां पर मुर्दा पड़ी हुई होंगी उस मैदान हशर में। वहां पे हजरत इज़राइल भी जान दे चुके होंगे, तमाम फरिश्ते जान दे चुके होंगे अल्लाह के हुक्म से, और उस सन्नाटे में, उस मुहीब खामोशी में अल्लाह पुकारेगा लमिनल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? आप सोच सकते हैं, सिर्फ ये सोच कर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो रब जो ये करने पर कादिर है और उसने कुरान में बताया है कि मैं ये करूंगा, वो रब, उसके साथ हम शिर्क करते हैं। जब वो पुकारेगा लमिनल मुल्कुल यौम, और कोई भी जवाब देने वाला नहीं होगा और वो खुद जवाब देगा, लिल्लाही वाहिदिल कहार, आज के दिन बादशाहत अल्लाह के लिए है जो एक है, यकता है और बदला लेने वाला है। तो ये वो अल्लाह है और उसके सामने हम किस किस किस्म के तमाशे करते हैं, जरा आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें। मालिकी यौमिद्दीन, फिर फाइनल जो शिर्क है, शिर्क फिल इबादत, बाकी सूरत इसकी नफी है। क्यों शिर्क फिल इबादत? और सूरह फातिहा हम कह रहे हैं इय्याका नअबुदु, सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं, व इय्याका नस्ताईन, और सिर्फ तेरी ही हम मदद मांगते हैं, या अल्लाह हम तेरी इस्तेआनत मांगते हैं बिला वास्ता। इस्तेआनत एक ऐसा लफ्ज है अरबी का जिसका मतलब है मदद मांगना बिला वास्ता। आनत जब हम कहते हैं ना कि हमने एक दूसरे की माली आनत की, हमने उनकी मतलब कि हमने उनको सपोर्ट किया, वो आनत है। इस्तेआनत जो है ना वो बिला वास्ता है। तो अल्लाह ने यहाँ पे, ये मैंने आपको बताया ना, हर किस्म के शिर्क की नफी है ये। ये जो हम बीच में वास्ते डालते रहते हैं ना, सिवाय दुरूद के, हाँ दुरूद पढ़े दुआ कबूल होती है, फलां के वास्ते से, ढमका के वास्ते से, जी नहीं। ये आप इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन आप हर नमाज में कह रहे हैं, और क्या मदद हम अल्लाह से मांग रहे हैं? सबसे बड़ी मदद हम क्या मांग रहे हैं? हैं जी, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे। कौन सा सीधा रास्ता? सिरात मुस्तकीम क्या है? हदीस की रूह से जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेत में एक लकीर लगाई और कहा कि देखो यहां मैं खड़ा हूं और वो उस सिरे पे जन्नत है, ये जो बीच में सीधा रास्ता है ना, ये सिराते मुस्तकीम है। वो उस सिरे पे एक फरिश्ता खड़ा होकर मुझे जन्नत में बुला रहा है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये क्या है, यानी ये लकीर क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये कुरान है। तो सिरात मुस्तकीम तो सीधी सीधी बात है जी, ये कुरान है। ये वो रास्ता है जो पकड़ना है और जिस पर फिर इस्तिकामत इख्तियार करनी है, और ये जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है। क्यों, हमें कैसे पता है? सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये उन लोगों का रास्ता है जिन पर तेरे इनाम हुए। और हमें कौन सा इनाम चाहिए? सबको कौन सा इनाम चाहिए जी? हैं जी, जन्नत में जाना है। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ना वो जिन पर तेरा गजब हुआ, वलद्वालीन, और ना ही वो जो गुमराह हो गए। ये आपकी सूरह फातिहा खत्म हुई। आपने चारों किस्म के शिर्क पढ़ लिए, आपने चारों किस्म के शिर्क की नफी भी पढ़ ली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये लेसन आप दोबारा कुरान खोल के और नोट्स के साथ अपने नोट्स लिखते हुए आप ये लेसन पढ़ें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और आगे भी पढ़ाएं। मेरी आपसे ये इस्तेदा है। ठीक है जी, अल्लाह हम सबको कुरान समझने की और कुरान आगे फैलाने की और पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।